ये वो बातें थीं जो मैंने साहिबजादा मौली अब्दुल लतीफ़ साहब से कहीं, और वो अमर जो आखिर में उनको समझाया वो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में मज़हबी पहलू के रूह से 16 खसूसियतें हैं। अव्वल ये कि वो बनी इसराइल के लिए एक मौऊद नबी था, जैसा कि इस पर इसराइली नबियों के सहीफ़े गवाह हैं। दूसरी ये कि मसीह ऐसे वक्त में आया था जबकि यहूदी अपनी सल्तनत खो चुके थे, यानी उस मुल्क में यहूदियों की कोई सल्तनत नहीं रही थी। गो मुमकिन था कि किसी और मुल्क में जहां बाद फिरके यहूद के चले गए थे कोई हुकूमत उनकी कायम हो गई हो, जैसा कि समझा जाता है कि अफगान और ऐसा ही कश्मीरी भी यहूद में से हैं, जिनका इस्लाम कबूल करने के बाद सलातीन में दाखिल होना एक ऐसा वाकया है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हज़रत मसीह के ज़हूर के वक्त उस हिस्से मुल्क से यहूद की सल्तनत जाती रही थी और वो रूमी सल्तनत के मातहत ज़िंदगी बसर करते थे, और रूमी सल्तनत को अंग्रेज़ी सल्तनत से बहुत मुशाबहत थी। तीसरी यह कि वह ऐसे वक्त में आया था कि जबकि यहूदी बहुत से फ़िरक़ों में मुनकसम हो चुके थे और हर एक फ़िरका दूसरे फ़िरका का मुखालिफ था, और इन सब में बाहम सख्त नाद और खसूमतें पैदा हो गई थीं, और तौरात के अक्सर अहकाम बबायस उनके कसरत इख्तलाफात के मुश्तबे हो गए थे। सिर्फ वहदानियत इलाही में वो बाहम इत्तफाक रखते थे, बाकी अक्सर मसाइल जुजिया में वो एक दूसरे के दुश्मन थे, और कोई वायज उनमें बाहम सुलह नहीं करा सकता था और ना उनका फैसला कर सकता था। इस सूरत में वो एक आसमानी हकम यानी फैसला कुरिंदा के मोहताज थे जो खुदा से जदीद वही पाकर अहले हक की हिमायत करे, और कजा व कदर से ऐसी जलालत की मलूनी उनके कुल फिरकों में हो गई थी जो खालिस तौर पर उनमें एक भी अहले हक नहीं कहला सकता था। हर एक फ़िरका में कुछ न कुछ झूठ और अफरात और तफरीत की आमेजिश थी। बस यही वजह पैदा हो गई थी कि यहूद के तमाम फ़िरकों ने हज़रत मसीह को दुश्मन पकड़ लिया था और उनकी जान लेने की फ़िक्र में हो गए थे, क्योंकि हर एक फ़िरका चाहता था कि हज़रत मसीह पूरे तौर पर इनका मुसद्दक हो और उनको रास्तबाज और नेक चलन ख्याल करे और उनके मुखालिफ को झूठा कहे, और ऐसा मुदाहिना खुदा ताला के नबी से गैर मुमकिन था। चहारम ये कि मसीह इब्ने मरियम के लिए जिहाद का हुक्म न था, और हज़रत मूसा का मज़हब यूनानियों और रूमियों की नज़र में इस वजह से बहुत बददाम हो चुका था कि वो दीन की तरक्की के लिए तलवार से काम लेता रहा है वो किसी बहाना से। चुनाचे अब तक उनकी किताबों में मूसा के मज़हब पर बराबर ये एतराज़ हैं, कई लाख शीरखार बच्चे उसके हुक्म और नीज उसके खलीफा यशू के हुक्म से जो उसका जानशीन था कत्ल किए गए, और फिर दाऊद और दूसरे नबियों की लड़ाइयाँ भी इस एतराज़ को चमकाती थीं। बस इंसानी फितरतें इस सख्त हुक्म को बर्दाश्त न कर सकें, और जब ये ख्यालात गैर मज़हब वालों के इंतहा तक पहुँच गए तो खुदा ताला ने चाहा कि एक ऐसा नबी भेज कर जो सिर्फ सुलह और अमन से मज़हब को फैलाए, तौरात पर से वो नुक्ताचीनी उठा दे जो गैर कौमों ने की थी। सो वह सुलह का नबी ईसा इब्न मरियम था। पाँचवीं ये कि हज़रत ईसा के वक्त में यहूदियों के उलमा का अमूमन चाल चलन बहुत बिगड़ चुका था और उनका कौल और फेल बहम मुताबिक न था। उनकी नमाजें और उनके रोज़े महज रियाकारी से पुर थे, और वो जाह तलब उलमा रूमी सल्तनत के नीचे ऐसे दुनिया के कीड़े हो चुके थे कि तमाम हिम्मतें उनकी इसी में मसरूफ़ हो गई थीं कि मकर से या ख़यानत से या दगा से या झूठी गवाही से या झूठे फतवों से दुनिया कमावें। उनमें बुजुर्ग जाहिदाना लिबास और बड़े बड़े जुब्बों के एक ज़र्रा रूहानियत बाकी नहीं रही थी। वह रूमी सल्तनत के हुकाम से भी इज़्ज़त पाने के बहुत ख्वाहां थे, और तरह तरह के जोड़ तोड़ और झूठी खुशामद से सल्तनत से इज्जत और किसी कदर हुकूमत हासिल कर ली थी, और चूंकि उनकी दुनिया ही दुनिया रह गई थी इसलिए वो इस इज्जत से जो तौरात पर अमल करने से आसमान पर मिल सकती थी बिल्कुल लापरवाह होकर दुनिया परस्ती के कीड़े बन गए थे, और तमाम फ़ख्र दुनिया की वजाहत में समझते थे। और इसी वजह से मालूम होता है कि उस मुल्क के गवर्नर पर जो रूमी सल्तनत की तरफ से था किसी कदर उनका दबाव भी था, क्योंकि उनके बड़े बड़े दुनिया परस्त मौलवी दूर दराज सफ़र करके कैसर की मुलाकात भी करते और सल्तनत से ताल्लुकात बना रखते थे, और कई लोग उनमें से सल्तनत के वजीफा खार भी थे। इसी बिना पर वो लोग अपने तई सल्तनत के बड़े खैर खास जितलाते थे, इसलिए वो अगरचे हर एक नज़र से जेर निगरानी भी थे मगर खुशामदाना तरीक़ों से उन्होंने कैसर और उसके बड़े हुक्काम को अपनी नस्बत बहुत नेक जन बना रखा था। इन्हीं चालबाजियों की वजह से उलमा इनमें से सल्तनत के हुकाम की नज़र में मौजूद समझे जाते थे और कुर्सी नशीन थे, लिहाजा वो गरीब गलील का रहने वाला जिसका नाम यसूब बिन मरियम था इन शरीर लोगों के लिए बहुत कोफ्ता खातिर किया गया। उसके मुंह पर ना सिर्फ थूका गया बल्कि गवर्नर के हुक्म से उसको ताजियाने भी मारे गए। वो चोरों और बदमाशों के साथ हवालात में दिया गया, हालांकि उसका एक जर्रा कसूर न था। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से यहूदियों की एक दिलजोई थी, क्योंकि सल्तनत की हिकमत अमली का यह असूल है कि गिरोह कसीर की रियायत रखी जाए। सो इस गरीब को कौन पूछता था। यह अदालत थी जिसका नतीजा यह हुआ कि आखिर वो यहूदियों के मौलवियों के सुपुर्द हुआ और उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। ऐसी अदालत पर खुदा जो जमीन व आसमान का मालिक है लानत करता है, मगर अफसोस इन हुकूमतों पर जिनकी आसमान के खुदा पर नजर नहीं। यूं बगुफ्तन पैलातूस जो इस मुल्क का गवर्नर था, माँ अपनी बीवी के हजरत ईसा का मुरीद था और चाहता था कि उसे छोड़ दे, मगर जब जबरदस्त यहूदियों के उलमा ने जो कैसर की तरफ से बबायस अपनी दुनियादारी के कुछ इज्जत रखते थे उसको यह कहकर धमकाया कि अगर तू इस शख्स को सजा नहीं देगा तो हम कैसर के हजूर में तेरे पर फरियाद करेंगे, तब वो डर गया क्योंकि बुजदिल था, अपनी इरादत पर कायम न रह सका। ये खौफ इसलिए इसके दामनगीर हुआ कि बाज मुअज्जज़ उलमा यहूद ने कैसर तक अपनी रसाई बना रखी थी और पोशीदा तौर पर हजरत ईसा की नस्बत ये मुखबरी करते थे कि ये मुफसिद और दरपर्दा गवर्नमेंट का दुश्मन है और अपनी एक जमीयत बनाकर कैसर पर हमला करना चाहता है। बज़ाहिर ये मुश्किलात भी पेश थीं कि उस सादा और गरीब इंसान को कैसर और उसके हुकाम से कुछ ताल्लुक न था और रियाकारों और दुनिया तलबों की तरह उनसे कुछ तारुफ न था और खुदा पर भरोसा रखता था। और अक्सर उलमाए यहूद अपनी दुनिया परस्ती और चालबाजी और खुशामदाना वजह से सल्तनत में धस गए थे। वो सल्तनत के दरहकीकत दोस्त न थे, मगर मालूम होता है कि सल्तनत इस धोखे में ज़रूर आ गई थी कि वो दोस्त हैं, इसलिए उनकी खातिर से एक बेगुनाह खुदा का नबी हर एक तरह से जलील किया गया। मगर वो जो आसमान से देखता और दिलों का मालिक है, वो तमाम शरारत पेशा उसकी नज़र से महजूब न थे। आखिर अंजाम ये हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिए जाने के बाद खुदा ने मरने से बचा लिया और उनकी वो दुआ मंजूर कर ली जो उन्होंने दर्द दिल से बाग में की थी। जैसा कि लिखा है कि जब मसीह को यकीन हो गया कि ये खबीस यहूदी मेरी जान के दुश्मन है और मुझे नहीं छोड़ते, तब वो एक बाग में रात के वक्त जाकर जार जार रोया और दुआ की कि या इलाही, अगर तू ये प्याला मुझसे टाल दे तो तुझसे बईद नहीं, तू जो चाहता है करता है। इस जगह अरबी इंजील में ये इबारत लिखी है, फबका बेदमु इन जारियतिन व बरात मुतहद्दरतिन फसुमे अल तकवा हो, यानी यसू मसीह इस कदर रोया कि दुआ करते करते उसके मुंह पर आंसू रवा हो गए और वो आंसू पानी की तरह उसके रुखसारों पर बहने लगे और वह सख्त रोया और सख्त दर्दनाक हुआ। तब उसके तकवा की वजह से उसकी दुआ सुनी गई और खुदा के फजल ने कुछ असबाब पैदा कर दिए कि वो सलीब पर से जिंदा उतारा गया और फिर पोशीदा तौर पर बागबानों की शक्ल बनाकर इस बाग से जहां वो कब्र में रखा गया था बाहर निकल आया और खुदा के हुक्म से दूसरे मुल्क की तरफ चला गया और साथ ही उसकी मां गई, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, आवैना हुमा इला रव्वत इन ज़ात करार ममईन, यानी इस मुसीबत के बाद जो सलीब की मुसीबत थी, हमने मसीह और उसकी माँ को ऐसे मुल्क में पहुँचा दिया जिसकी ज़मीन बहुत ऊँची थी और साफ पानी था और बड़े आराम की जगह थी। और अहादीस में आया है कि इस वाक़े के बाद ईसा इबन मरियम ने 120 बरस की उम्र पाई और फिर फौत होकर अपने खुदा को जा मिला और दूसरे आलम में पहुँच कर याहिया का हम नशीन हुआ, क्योंकि उसके वाक़या और याहिया नबी के वाक़या को बहम मुशाबहत थी। इसमें कुछ शक नहीं कि वो नेक इंसान था और नबी था, मगर उसे खुदा कहना कुफ्र है। लाखों इंसान दुनिया में ऐसे गुजर चुके हैं और आइंदा भी होंगे। खुदा किसी के बरगजीदा करने में कभी नहीं थका और न थकेगा। छठी खसूसियत यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसर रूम की अमलदारी के मातहत मबूस हुए थे। सातवीं खसूसियत यह कि रूमी सल्तनत को मजहब ईसवी से मुखालफत थी, मगर अखीरी नतीजा ये हुआ कि मजहब ईसाई कैसरी कौम में घुस गया, यहाँ तक कि कुछ मुद्दत के बाद खुद कैसर रूम ईसाई हो गया। आठवीं खसूसियत यह है कि यसू मसीह के वक्त में, जिसको अहले इस्लाम ईसा कहते हैं, एक नया सितारा निकला था। नवीं खसूसियत यह है कि जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया तो सूरज को ग्रहण लगा था। दसवीं खसूसियत यह है कि उसको दुख देने के बाद यहूदियों में सख्त ताउन फैली थी। ग्यारहवीं खसूसियत यह है कि उस पर मजहबी तासुब से मुकदमा बनाया गया और यह भी जाहिर किया गया कि वह सल्तनत रूम का मुखालिफ اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ بارہویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا۔ تیرہویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ پیلاطوس کے سامنے سزائے موت کے لیے پیش کیا گیا تو پیلاطوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا۔ چودھویں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نہ تھا مگر ان کے سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا۔ پندرہویں خصوصیت یہ کہ یسوع بن مریم کے وقت میں جو قیصر تھا اس کے عہد میں بہت سی نئی باتیں رعایا کے آرام اور ان کے سفر و حضر کی سہولت کے لیے نکل آئی تھیں۔ سڑکیں بنائی گئی تھیں اور سرائیں تیار کی تھیں اور عدالت کے نئے طریقے وضع کیے گئے تھے جو انگریزی عدالت سے مشابہ تھے۔ سولہویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ پیدا ہونے میں آدم سے مشابہ تھا۔ یہ 16 خصوصیتیں ہیں جو موسوی سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی گئی تھیں۔ پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو ہلاک کر کے محمدی سلسلہ کو قائم کیا جیسا کہ نبیوں کے صحیفوں میں وعدہ دیا گیا تھا تو اس حکیم و علیم نے چاہا کہ اس سلسلہ کے اول اور آخر دونوں میں مشابہت تامہ پیدا کرے۔ تو پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مسیل موسیٰ قرار دیا، جیسا کہ آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا سے ظاہر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کافروں کے مقابل پر تلوار اٹھائی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت جبکہ مکہ سے نکالے گئے اور تعاقب کیا گیا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی نظر کے سامنے سخت دشمن ان کا جو فرعون تھا غرق کیا گیا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت دشمن آپ کا جو ابو جہل تھا ہلاک کیا گیا۔ ایسا ہی اور بہت سی مشابہتیں ہیں جن کا ذکر موجب طول ہے۔ یہ تو سلسلہ کے اول میں مشابہتیں ہیں، مگر ضروری تھا کہ سلسلہ محمدی کے آخری خلیفہ میں بھی سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے مشابہت ہو، تا خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلسلہ محمدیہ باعتبار امام سلسلہ اور خلفائے سلسلہ کے سلسلہ موسویہ سے مشابہت ٹھیک ہو۔ اور ہمیشہ مشابہت اول اور آخر میں دیکھی جاتی ہے، اور درمیانی زمانہ جو ایک طویل مدت ہوتی ہے گنجائش نہیں رکھتا کہ پوری پوری نظر سے اس کو جانچا جائے، مگر اول اور آخر کی مشابہت سے یہ قیاس پیدا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں بھی ضرور مشابہت ہوگی، کو نظر عقلی اس کی پوری پڑتال سے قاصر ہے۔